रंगा राव का राजतिलक निश्चित हुआ। सारे परगने के साथ राजधानी में उत्साह उमड़ पड़ा। रंगा राव की आयु 35 वर्ष की थी। वे अंग्रेजी के स्नातक थे। लोग अपेक्षा करने लगे कि जमींदार नए सुधार के पक्षपाती होने के कारण शासन में कई परिवर्तन लाएंगे और जनता का अधिक कल्याण होगा। कुछ लोगों की धारणा थी कि हमारी प्राचीन कार्य पद्धतियाँ अच्छी नहीं हैं और पाश्चात्य ढंग पर किया हुआ प्रत्येक कार्य प्रगति का सूचक होता है। भूतपूर्व जमींदार साहब पुराने ढंग से ही राज करते आए थे, जबकि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा था। फलतः आज तक देश के अनेक युवकों को अपनी शक्ति प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। आज यह आशा की जाने लगी कि नए जमींदार नई संस्थाएं स्थापित करेंगे और युवक समाज उन संस्थाओं में नए प्राणों की प्रतिष्ठा करेगा। कृष्णम नायडू अपने पूर्वजों के ढंग पर चलते रहे। यूँ तो गत 10 वर्षों से रंगाराव ही जमींदारी संभालते आए थे, तथापि कृष्णम नायडू का ही हुक्म चलता रहा। रंगाराव के जमींदार बनते ही लोग विश्वास करने लगे कि देश के कल्याण का समय आ गया है। जमींदार बनते ही रंगाराव ने शासन में कई परिवर्तन किए। कृष्णम नायडू के राज्य में कोई काम झटपट न हो पाता था। लोग जमींदार से मिलने आते, पर उनके दर्शन आसानी से नहीं हो पाते थे। कम से कम 1-2 महीने तक उन्हें अन्य सत्रों में भोजन करते हुए राजधानी में पड़ा रहना पड़ता था, और फिर दर्शन करके भी क्या हासिल होता था। जमींदार साहब उनका नाम पूछते, ग्राम पूछते, फिर भोजन की सुविधा के विषय में प्रश्न करते, परंतु यह नहीं पूछते थे कि किस काम से आए हो। आने वाले स्वयं अपना काम बताने में झिझकते थे। इस प्रकार समय कटता जाता, पर उनका काम ठिकाने न लगता। अंत में साहस करके वे जमींदार से अपने काम के विषय में निवेदन करते। यदि कोई नौकरी के लिए आता तो जमींदार साहब कहते, अच्छा तुम जाकर बीवी बच्चों को ले जाओ। वह बेचारा अपना परिवार ले आता। जमींदार साहब उसके वेतन का कोई जिक्र ही न करते। वह खुद भी नहीं मांग पाता था। जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती कोठी से लेता और खाता रहता। किसी के घर में ब्याह आदि तय होता तो जमींदार साहब से निवेदन करते ही वे अपने कारकुन से कहते, इनके घर ब्याह होने वाला है, सारा प्रबंध करो। और देखते देखते सारा प्रबंध हो जाता। यह था स्वर्गस्थ जमींदार और उनके पूर्वजों का अनोखा ढंग। कभी कभी दीवान जी आकर कहते, महाराज अब के माल गुजारी वसूल नहीं हुई। जमींदार पूछते, क्या कुछ ही वसूल नहीं हुआ? दीवान जी कहते, बहुत बकाया रह गया है सरकार। जमींदार पूछते, कितना रह गया है? दीवान जी कहते, इस गांव में 10,000 में से 9,000 वसूल हुए हैं, 1,000 बकाया रह गया है, दूसरे गांव में 2,000 बाकी है। इसी प्रकार जमींदार बात काट कर कहते, अच्छा अगले साल वसूल कर लेना। क्या तुमने यह भी जानने की कोशिश की है कि अब की उपज अच्छी हुई है कि नहीं? किसान बेचारे गरीब हैं, उन्हें तंग करके पैसा जमा करने से हमारा भी क्या भला होगा। 10 आदमी खाएं यही अच्छा है। 4 लाख के 2 लाख भी वसूल हों तो हमारे लिए काफ़ी है। तुम्हारी क्या राय है? दीवान जी चुप हो जाते। 4-5 बरस तक इसी प्रकार बकाया चढ़ने के बाद गांव वाले जमींदार साहब के दर्शन करने आते और उन्हें अपनी मुसीबतों का ब्यौरा सुनाते। जमींदार साहब सारा बकाया माफ़ करते और उन्हें पेट भर खाना खिलाकर विदा करते। एक बार जमींदार साहब की अमराई में खूब कैरियाँ लगी थीं। गाँव के लड़कों ने अमराई में घुसकर सारी कैरियाँ झाड़ दीं। माली ने जाकर जमींदार साहब से शिकायत की और उन लड़कों का पता बताया। लड़के बड़े शैतान थे, सारा गांव उनसे तंग था। गांव के लोगों और दीवान जी की इच्छा थी कि उन्हें कड़ी सजा दी जाए। जमींदार साहब ने सारे लड़कों को बुला भेजा। वे आए, उनके दिलों में धक धक हो रही थी। जमींदार साहब ने उनसे पूछा, तुम में से कैरियाँ किसने चुराई? दीवान जी ने कहा, सभी ने चुराई हैं सरकार, सबको सजा मिलनी चाहिए। जमींदार साहब ने कहा, अच्छा सबको सजा मिलेगी। फिर उन्होंने अपने रसोइयों को बुलाकर कुछ कानाफूसी की और इधर उधर की बातों में व्यस्त हो गए। 1 घंटा बीत गया, परंतु वहां से टलने की बच्चों की मजाल न थी। अंत में रसोइया एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म लड्डू और जलेबी बनाकर ले आया। जमींदार साहब ने थाली लड़कों के सामने रखवा कर कहा, जो लड़का अधिक मिठाई खाएगा उसे सजा नहीं मिलेगी। लड़के आश्चर्यचकित हो गए, एक दूसरे की ओर ताकने लगे और जहां तक बन पड़ा खाने लगे। फिर भी थाली में आधी मिठाई बच गई। जमींदार साहब लड़कों से बोले, क्यों बे शैतानों, इतने ही के लिए अमराई में घुसकर कैरियां चुरा रहे थे? सब मिलकर 10 जलेबी भी नहीं खा सके, कैसे लड़के हो तुम? छिह छिह, चले जाओ यहाँ से और वह बची हुई मिठाई भी लेते जाओ। लड़के मिठाई लेकर दौड़ पड़े। माली और दीवान जी निर्विण्ण होकर जमींदार साहब का मुँह ताकने लगे। जमींदार ने कहा, जाने भी दो, शरारत बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बच्चों के रूप में भगवान बसते हैं, उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए। एक बार जमींदार साहब दीवान खाने में बैठे हुए थे। गांव में योगेश्वर अवधानी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी को प्रसव संबंधी रोग हुआ। वैद्य ने कहा कि इसके लिए सूतिकाभरण नामक औषधि आवश्यक है, लेकिन विशुद्ध सूतिकाभरण केवल जमींदार साहब के पास था। उसे मांग लाने के लिए योगेश्वर राजदर्शन करने गया। जमींदार साहब ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। ब्राह्मण प्रतीक्षा करने लगा कि कब जमींदार साहब उसकी ओर मुड़े और कब वह अपनी विनती उन्हें सुनाए, परंतु जमींदार साहब ने उसकी ओर देखा ही नहीं। बेचारा ब्राह्मण बड़ी देर तक खड़ा रहकर लौट गया। थोड़ी देर बाद जमींदार ने नौकर को बुलाकर कहा, योगेश्वर जी अभी अभी आकर लौट गए हैं, जरा जाकर पूछ आ कि किस काम से आए थे। नौकर ने जाकर पूछताछ की और जमींदार से सारा हाल कह सुनाया। जमींदार तुरंत बोले, अरे रे, बेचारा ब्राह्मण कुछ कहे भी नहीं क्यों चला गया? यह कहकर उन्होंने एक छोटी थैली में सूतिकाभरण की गोलियां भरकर ब्राह्मण के पास भेज दी। लेकिन ब्राह्मण इतनी सारी गोलियां लेकर क्या करता? उसने अपनी आवश्यकता अनुसार गोलियां निकालकर वह मूल्यवान औषधि निक्षेप की तरह छिपा रखी। सुबन्नापेट के जमींदार आयुर्वेद की विशुद्ध औषधियां बनवा कर रखते थे। उतनी मूल्यवान औषधियां तैयार कराने की सामर्थ्य और लोगों में नहीं थी। संस्थान का वैद्य सारे परगने का ही वैद्य था, वही सारे रोगों की चिकित्सा करता था। मूल्यवान औषधियों की आवश्यकता पड़ती तो उन्हें कोठी से मंगाया जाता था। गरीबों को अपने इलाज के लिए पैसा नहीं देना पड़ता था। कृष्णम नायडू ऐसे उदार जमींदार थे, ऐसी शान सौकत वाले प्रभु थे। जमींदार के चरागाहों में सभी लोगों के जानवर चरते थे। गरीब लोग उन्हीं चरागाहों से लकड़ी चुनकर ले जाते और उसे जलाकर खाना बना लेते। जमींदार साहब के इमली वन में खूब इमली लगती थी। गांव के लोग बिना किसी रोक टोक के कच्ची इमली तोड़ लेते और उसका अचार बनाते। सारे परगने में जमींदार की पोरमबोक जमीन में कई वृक्ष थे जिनसे आम लोग फायदा उठाते थे। पोरमबोक वह सरकारी जमीन होती है जो साधारणतः खेती के योग्य नहीं होती। जमींदार के मिर्ची, बैंगन, केले आदि के बगीचे सब लोगों के काम आते थे। जमींदार के ताड़वन से सब लोग पत्ते और रेशा लिया करते थे। यह था कृष्णम नायडू और उनके पूर्वजों के प्रशासन का ढंग। सुबन्ना पेट के जमींदार केवल व्यक्तियों के लिए ही नहीं वरन संस्थाओं के लिए भी कल्प वृक्ष थे। चमड़े की पुतलियों का खेल दिखाने वाले, बाजारों में नाटक खेलने वाले आदि कलाकारों को जमींदार की ओर से वार्षिक अनुदान दिए जाते थे। इन कलाकारों का काम था कि जमींदारी के सारे देहातों में अपनी कला का मुफ्त प्रदर्शन करें। इसी प्रकार दीवावेशधारी, मेढ़ों का खेल दिखाने वाले, डोमर, जादू टोना करने वाले, नाना प्रकार के लोगों को जमींदार पाल रहे थे। उन्हें लोग जमींदार नहीं कहते थे, उन्हें प्रभु के नाम से ही संबोधित किया जाता था। कृष्णम नायडू बड़े बुद्धिमान थे, रसज्ञ थे। जिस दिन रंगाराव के घर लड़का हुआ, कृष्णम नायडू ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। गुंटूर से एक नाटक कंपनी वाले आए और जमींदार से निवेदन करने लगे कि उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाए। उनमें से एक अभिनेता के बारे में कहा गया कि वह स्त्री पात्र धारण करने में अत्यंत सिद्धहस्त है। कृष्णम नायडू ने उस अभिनेता से पूछा, तुम करते हो स्त्री पात्र धारण? अभिसारिका के लक्षण तो बताओ। उस बेचारे को क्या पता था कि अभिसारिका किस चिड़िया का नाम है और वासक सज्जिका किसे कहते हैं? बस मुंह ताकने लगा। जमींदार साहब बोले, वाह, बड़े अच्छे अभिनेता हो। अब चलते बनो यहाँ से। ये नाटक कंपनियां शुरू करके बेचारे पुराने भागवतों को उनके पेशे से क्यों वंचित कर रहे हो? आंध्र के ग्रामीण प्रांतों में कई प्रकार के नाटकों का प्रयोग प्रचलित है। भागवत के अभिनेता होते हैं जो भगवान की लीला संबंधी नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। तुम सब लोग ब्राह्मण लगते हो, बेचारे किसानों के मुंह का कौर क्यों छीनना चाहते हो? और फिर तुम्हें कुछ आता भी तो नहीं, सबके सब गोबर गणेश लगते हो। तुम में पुरुष वेशधारी कौन है, जरा यह तो बता दे कि श्रृंगार नायकों के कितने प्रकार हैं और उनके क्या लक्षण हैं? अब अपना नाटक बंद करो, तुम जो मांगो दे दूंगा। उनकी बातें सुनकर सब चुप हो गए और धीरे धीरे वहां से खिसक गए। कृष्णम नायडू बड़े बलवान और शूरवीर थे। वे ही क्या, उनके सारे पूर्वज बड़े अच्छे शिकारी थे। उन्होंने शिकार के लिए खास खास जंगल पाल रखे थे। हिरण, रीछ आदि कई जानवरों को उन जंगलों में रख छोड़ा था। निजाम, सरकार के जंगल में भी शिकार करने की उन्हें अनुमति थी। वे खंजर और ढाल लेकर शेर का सामना करते थे, बंदूक का उपयोग कभी नहीं किया था। कृष्णम नायडू के पिता हरप्पा नायडू कहा करते, शेर को बंदूक से मारने में क्या बहादुरी है, वह तो स्त्रियों का काम है। एक बार वे जंगल से गुजर रहे थे कि एक आदमखोर शेर पीछे से उन पर झपटा। उन्होंने दोनों हाथों से उसका गला दबोचा और अपने दांव पेच में उसे पकड़कर खंजर भोंक दिया। हरप्पा नायडू की गर्दन पर उस शेर के पंजे के निशान अंत तक बने रहे। वे भूतपूर्व जमींदार, ऊंचे कद के, भरे पूरे महाभुज ऋषस्कंध थे। एक बार कृष्णम नायडू को यहाँ मेढ़ों को लड़ाने वाले आए। उनमें से एक ने मेढ़े को पीछे ढकेला और अपनी बाहों से उसे रोका। उसकी बाँह दहल गई। कृष्णम नायडू ने कहा, बाँह से नहीं, कलाई से उसका मुकाबला करो। वह बोला, मेरी कलाई में दर्द है। कृष्णम नायडू ने खुद उठकर मेढ़े को उकसाया और अपनी कलाई से उसका मुकाबला किया। मेढ़ा बड़ी तेजी से आकर उनकी कलाई से टकराया। कलाई से मेढ़े का मुकाबला करने में एक दांव होता है, परंतु कृष्णम नायडू किसी दांव का प्रयोग न करते हुए पर्वत की भांति खड़े हो गए। सब लोग आश्चर्यचकित हुए। आगंतुकों ने कहा, महाराज आप अनुभवी हैं, हम कच्चे हैं। जमींदार ने उन्हें 200 रुपये का पारितोषिक देकर विदा किया। कुश्ती लड़ना, तलवार चलाना, लाठी फेरना आदि कलाओं में जमींदार अद्वितीय थे। कृष्णम नायडू सचमुच तलवार के धनी थे। एक बार उन्होंने 200 आदमियों को आमंत्रण दिया कि वे लाठियां लेकर उन पर हमला करें, फिर स्वयं ढाल लेकर खड़े हो गए और बोले कि बिना किसी संकोच के जो उन पर वार करेगा उसे 1116 रुपये का इनाम मिलेगा। आंध्र प्रदेश में 116 और 1116 रुपये पुरस्कार के रूप में देने की प्रथा है। पूरे एक घंटे तक मुकाबला चलता रहा, पर कोई भी उन पर प्रहार नहीं कर पाया। अंत में जमींदार ने उन सबको यथोचित इनाम देकर कहा, हाँ जी, यह कला अब किस काम की, एक बंदूक के आगे सब कलाएं धरी रह जाएंगी, और अगर इनका उपयोग हो भी तो इनसे करना ही क्या है। फिर उन्होंने ठंडी आह भरी, अब देश में किसी भी कला का कोई प्रयोजन नहीं रहा। कृष्णम नायडू 50,000 मूल्य देकर कश्मीर से एक हाथी ले आए। वह ताल वृक्ष की भांति अत्यंत उन्नत था। उसके बहुत लंबे दांत ऐसे लगते थे मानो शत्रुओं को पकड़कर चकनाचूर करने के लिए उतावले भयंकर बाहु हों। 10 फीलवान उसे जंजीरों में बांधकर बड़ी मुश्किल से कोठी पर ले आए। वहां 400 वर्ष पुराना एक पीपल का वृक्ष था। अन्य हाथियों को हटाकर उस वृक्ष के पास इस गजराज को रखा गया। दूर के प्रवास तथा निरंतर बंधन के कारण हाथी कुछ बेचैन हो उठा और रात को मस्त होकर जंजीरें तोड़ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसे कोई नहीं पकड़ सका। कृष्णम नायडू खुद लक्ष्मण स्वामी नामक अपने बड़े हाथी पर सवार होकर जंगल में गए और उस मस्त हाथी का सामना किया। लक्ष्मण स्वामी चौंक गया, परंतु जब तक पीठ पर कृष्णम नायडू बैठे थे तब तक उनका हुक्म मानना जरूरी था। मस्त हाथी ने डट कर कृष्णम नायडू पर आक्रमण किया। नायडू ने एक विचित्र आवाज की। वह गरज सुनकर मस्त हाथी चुपचाप खड़ा हो गया, पर दूसरे ही क्षण वह अपनी सूंड उठाकर लक्ष्मण स्वामी से लड़ने पर उतारू हुआ। कृष्णम नायडू ने लक्ष्मण स्वामी के दांतों पर उतर कर वहीं से मस्त हाथी के सूंड को पकड़ लिया और उसके दांतों को खूब इधर उधर मरोड़ा। मस्त हाथी चीख कर पीछे मुड़ गया, परंतु नायडू उसका पीछा करके लक्ष्मण स्वामी पर से उसके कुंभ स्थल पर कूद पड़े और उसे अपने वश में करके लौटा आए। लक्ष्मण स्वामी पीछे पीछे लौटा। मस्त हाथी के गले में लोहे की मेखों की जंजीर 1 महीने तक लटकाई गई। कोई फीलवान उसे वश में नहीं कर पाता था। केवल कृष्णम नायडू के आने पर ही वह कुछ बात सुनता। कृष्णम नायडू के लिए यह कला नई न थी, आनुवंशिक थी। जमींदार के जंगल पर अनेक की आजीविका निर्भर थी। तरह तरह के फल तोड़कर लोग ले जाते, सूखे पेड़ों से तने काट कर ले जाते, खरगोश आदि छोटे जानवरों को मारकर खाते, अपने मवेशी चरागाहों में चराते, कई लोग वहां से लकड़ी इकट्ठी करके उसे शहर में बेच लेते। इसके लिए उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। जमींदार केवल किसानों से मालगुजारी वसूल करते थे और किसी से कुछ नहीं। इस प्रकार 300 वर्ष तक उनका राज चलता रहा। जमींदार समस्त विद्याओं के पोषक थे। सांग वेदों का अध्ययन करने वाले तथा ज्योतिष के पंडितों को उन्होंने कई अग्रहार दिए थे। अग्रहार वह गांव जो ब्राह्मणों या पुजारियों को उनकी आजीविका के लिए दिया जाता है। तेलुगु तथा संस्कृत भाषा के कवियों का वे सदा से पोषण करते आए थे। जमींदार खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु पंडितों की नित्य गोष्ठी तथा साहचर्य के कारण उन्हें सही बातों की पूरी पूरी जानकारी हो चली थी। एक बार हरप्पा नायडू के दरबार में एक व्याकरण के पंडित पधारे। उसी समय एक तेलुगु कवि भी आए। कवि ने राजा की प्रशंसा में कुछ पद सुनाए। उनमें सौदामिनी शब्द का प्रयोग था। व्याकरण के पंडित उस प्रयोग का बखान करने लगे। बोले, वाह वाह, यह प्रयोग अत्यंत प्रौढ़ है। तेनायक दीक्षसूत्र से सौदामिनी शब्द की सिद्धि हुई है। ये कवि महोदय व्याकरण का भी अध्ययन कर चुके जान पड़ते हैं। बेचारे कवि को व्याकरण का झमेला कुछ भी ज्ञात न था। कृष्णम नायडू हंसकर बोले, शास्त्री जी, कौन नहीं जानता कि सौदामिनी का अर्थ बिजली है। उसका प्रयोग करने के लिए आपके व्याकरण की आवश्यकता नहीं। जमींदारों को परिपूर्ण लोक ज्ञान था, उनमें समग्र विवेक शक्ति थी। कई भाट जो तेलुगु में अच्छी कविता लिख सकते थे, जमींदारों के दरबार में रखे जाते थे। भारत, भागवत, रामायण आदि संस्कृत तथा आंध्र के ताड़पत्र ग्रंथों का संचय कोठी में रहता था। लिखित ग्रंथों के पुनर्लेखन के लिए दो लिपिक नियुक्त थे। कोठी के दीवान खाने में प्राचीन काल के चित्र लगे थे। दीवारों पर तलवार, खंजर, भाले, ढाल आदि युद्ध व आखेट का उपयुक्त साज सामान रखा गया था। किले का एक सिंह द्वार था और एक पिछला द्वार। अंग्रेजों की विजय के पूर्व कोठी का निर्माण हुआ था, अतएव उसका प्राचीर पत्थर का बना था और इतना चौड़ा था कि एक गाड़ी उस पर से अनायास गुजर सके। प्राचीर के चारों ओर खंदक भी थी। आज वह खंदक बेकार हो गई थी। गांव की तरफ का उसका भाग मिट्टी आदि से पट गया था। कहीं कहीं कोठी का प्राचीर भी शिथिल हो गया था। उसकी मरम्मत के लिए अंग्रेज सरकार से आज्ञा नहीं मिलती थी। किला सुविशाल था, उसमें 10,000 लोग आसानी से वास कर सकते थे। भीतर जगह जगह पर बड़े बड़े वृक्ष और नाना प्रकार की बेलें थीं। दक्षिण दिशा में चिड़ियाघर था, जिसमें शेर, चीते, बंदर आदि कठघड़ों में बंद थे। अनेक प्रकार के पक्षी भी वहां रखे गए थे। उन्हें देखने के लिए लोगों का तांता बंधा रहता था। कोठी ही प्रदर्शनी थी, कोठी ही पुस्तकालय थी, कोठी ही विद्यापोषण की संस्था थी, कोठी ही माँ थी, कोठी ही पिता, कोठी ही लोगों का सर्वस्व थी। आस्थानिक कवि, पंडित, लठैत, पहलवान, राजबंधु, ब्राह्मण, गायक, एक शब्द में कहना हो तो सारे जनों के लिए कोठी ही प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष थे। कृष्णम नायडू के अंतिम दिनों में कोठी का यह वैभव कुछ क्षीण पड़ गया था। रामेश्वर शास्त्री के पिता नारायण और उनके पूर्वज जमींदारों के पास मंत्री का काम करते आए थे। रामेश्वर शास्त्री भी लंबे समय तक मंत्री रहे। जब तक वे मंत्री पद पर रहे, तब तक उन्हीं की चलती रही, परंतु वे बिना वेतन भत्ते के मंत्री थे। रामेश्वर शास्त्री के कई कारोबार थे, अतएव कृष्णम नायडू अपने प्रशासन का अधिकांश काम आप ही देखते थे। जब दुर्दिनों ने शास्त्री जी को आ घेरा, तब उनकी और जमींदार की पट न सकी। कृष्णम नायडू ने मासिक 200 रुपये वेतन देकर हरिहर नाथ राव नामक एक व्यक्ति को अपना दीवान बनाया। हरिहर नाथ राव बीए पास थे और डिप्टी कलेक्टर का काम करते करते यहाँ दीवान नियुक्त हुए। वास्तव में जिले के कलेक्टर ने इस दीवान को जमींदार के सिर थोप दिया था। जमींदार उसका विरोध न कर सके। तथापि जब तक कृष्णम नायडू जीवित रहे, उन्होंने दीवान जी से कोई काम नहीं लिया। दीवान जी की बात कभी नहीं सुनी, उसकी सिफारिश कभी मंजूर नहीं की। हर बात में उनके विरुद्ध निर्णय लेते रहे। दीवान जी से वे नाराज भी थे, हाँ उन्हें वेतन अवश्य दे रहे थे। कृष्णम नायडू ने अंतिम 10 वर्षों में कोठी के कई परिवर्तन हुए। कई वृक्ष गिर गए, चिड़ियाघर के कई जानवर मर गए। धीरे धीरे कोठी आधी होकर रह गई। इस स्थिति में रंगाराव ने जमींदारी संभाली। कृष्णम नायडू के देहांत तक 1 लाख रुपये मालगुजारी का बकाया चढ़ा हुआ था। रंगाराव ने दीवान जी को हुक्म दिया कि बकाया एक एक पाई वसूल होना चाहिए। 2 महीने बीतते न बीतते 1,000 कुर्कियाँ हुई। लोग परेशान हो गए, सोचने लगे, ये जमींदार पुराने जमींदार जैसे नहीं है, बड़े बेमुरव्वत हैं। जमींदारी का बकाया सरकारी बकाया की तरह वसूल किया जाने लगा। रंगा राव ने हरिहर नाथ को हटाकर नागेश्वर राव नामक एक व्यक्ति को दीवान नियुक्त किया। यह नागेश्वर राव रंगा राव का सहपाठी था, जाति का कापू था। कापू आंध्र प्रदेश प्रांत की द्विजेतर जातियों में एक प्रमुख जाति है। उसका मासिक वेतन तय हुआ 400 रुपये। नागेश्वर राव गुड़ीवाड़ा का निवासी था। सुवन्नापेठ में उसे कोई नहीं पहचानता था। नियुक्ति के बाद विजयवाड़ा से सुवन्नापेठ आते आते उसने देखा कि जमींदार के चरागाहों में लोग लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं। तुरंत उसने उन पर जुर्माना ठोंक दिया। यह खबर सारे परगने में फैल गई। लोग समझ गए कि नए दीवान जी नए जमींदार से भी अधिक चंड शासक हैं, इसलिए अब हमें सतर्क रहना होगा। नए दीवान जी ने कोठी के नौकरों की जांच पड़ताल की और अनावश्यक नौकरों को हटा दिया। कोठी में 60 कारकुन काम करते थे। दीवान जी ने केवल 25 को रहने दिया और बाकी को छुट्टी दे दी। अंतःपुर के भी लगभग 20 नौकरों को हटा दिया गया होता, परंतु रनिवास से इसका विरोध हुआ। चिड़ियाघर में 10 नौकरों में से केवल 2 रखकर बाकी को छुट्टी दे दी गई। इस प्रकार हटाए हुए नौकरों की बाबत प्रतिमास 1500 रुपये की बचत दिख पड़ी। कोठी में काम करने वाले 25 कारकुन ब्राह्मण थे। नए दीवान जी ने 15 को हटा दिया और उनके स्थान पर अब्राह्मणों की नियुक्ति की। इस बात का कड़ा प्रबंध किया कि जमींदार के चरागाहों से एक तिनका भी न जाने पाए और लोग कोई भी वस्तु चुरा कर न ले जाएं। जंगलों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और जो लोग जंगल से कोई वस्तु लेते उनसे कर वसूल किया जाने लगा। कृष्णम नायडू के देहांत के बाद केवल 3 महीने की अवधि के भीतर यह सारा प्रशासन ठीक ठीक हो गया। मालगुजारी का बकाया 1 लाख वसूल हुआ। उस धन से राजतिलक की तैयारी होने लगी। राजतिलक का मुहूर्त आ पहुंचा। सारी व्यवस्था दीवान जी कर रहे थे। रंगा राव को मद्रास गए हुए 1 महीना हो चुका था। वहाँ के गवर्नर आदि सरकारी अफसरों को नजराने पेश कर रहे थे और उनके दर्शन कर रहे थे। सरकारी अफसरों ने उनकी सराहना की और आशा प्रकट की कि आधुनिक सभ्यता में पले रंगा राव के राज्यकाल में उनकी जमींदारी उन्नत दशा को प्राप्त होगी। मद्रास में कई और जमींदार रहते थे। उन सबसे मिलने और जमींदारी प्रशासन के विषय में विचार विमर्श करने में रंगा राव व्यस्त हो गए। रंगा राव की बुआ के 2 बेटे थे। उनमें से एक का नाम था राधा कृष्णैया और दूसरे का रामेश्वरम। उनकी फूफी का एक बेटा था जिसका नाम था सरवा रायडू। उन तीनों की रंगा राव से बचपन की मैत्री थी। तीनों कृष्णम नायडू के राज्यकाल में प्रशासन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप न कर सके, परंतु इन दिनों जब रंगा राव लगभग सदा ही मद्रास में रहने लगे तो ये तीनों सज्जन और दीवान की जमींदारी संभालने लगे। तीनों में सबसे बड़ा था सर्व रायडू। राजतिलक की तैयारियां जोर से चल पड़ीं। अतिथियों के निवास तथा भोजन के प्रबंध हुए। 10,000 रुपये खर्च करके राजतिलक समारोह वाले अहाते में पानी के नल लगाए गए और 10,000 के खर्चे से बिजली का जनरेटर मंगाया गया। निमंत्रण पत्रों की छपाई में 2,000 खर्च हुए। लोगों को विजयवाड़ा से लाने जाने के लिए 10 नई बसें खरीदी गईं। 1,000 पेट्रोल के डिब्बे खरीदे गए जिनमें आधे विजयवाड़ा में और आधे सुवर्णापेठ में रखे गए। देश के सभी विख्यात कवि आमंत्रित हुए। अन्य कवि बिना आमंत्रण के ही आने वाले थे। देश के सुप्रसिद्ध नाटक कंपनियों के नाटकों का आयोजन हुआ। आंध्र प्रांत में कोई ऊंचे दर्जे का गायक नहीं था, अतएव तमिल प्रांत के गायकों को बुलाकर उनकी बैठकों का आयोजन किया गया। ग्रैंड इंडियन सर्कस के 2 प्रदर्शन आयोजित किए गए। विजयनगर से एक विख्यात जादूगर प्रोफेसर को बुलाया गया। रंगा राव की छोटी फूफी का नाम नागम्मा था। वह बाल विधवा थी। उसकी आयु 50 वर्ष की थी। बचपन से ही वह सुवर्णापेठ में रहती थी। कृष्णम नायडू कुछ हद तक उसकी बात भी मानते थे। नागम्मा ने सर रायडू से कहा, कुचिपुड़ी के कलाकारों को क्यों नहीं बुलाते। पाद टिप्पणी में कुचिपुड़ी आंध्र के कृष्णा जिले का एक गांव जिसके नाम से भरतनाट्यम की कुचिपुड़ी शैली प्रसिद्ध है। इस शैली को सिद्धेंद्र नामक योगी ने प्रचलित किया था। आज यह नाट्य शैली सारे भारत में सुप्रसिद्ध है। सरवा रायडू हंसकर बोले, कुचिपुड़ी वाले गंवार होते हैं माँ जी। विजयवाड़ा और गुंटूर से अच्छे अच्छे अभिनेता आने वाले हैं। नागम्मा ने नाक सिकोड़ी। अन्य गाँव से तवायफों की 10 टोलियाँ मंगाई गई। स्थानीय टोलियों को नहीं बुलाया गया। स्थानिक टोली का नेतृत्व रत्नगिरी कर रही थी। रत्नगिरी ने नृत्य तथा अभिनय कुचिपुड़ी के विद्वानों से सीखा था। भामा कलाप सत्याभामा के श्रृंगार रसपूर्ण मनोभावों का एक दृश्य प्रबंध जो आंध्र प्रांत में प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। भरतनाट्यम वह प्रसिद्ध नाट्य प्रणाली जो मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित है। क्षत्रैया 18वीं सदी के दक्षिण के प्रसिद्ध श्रृंगारक पद कवि जिन्हें आंध्र का विद्यापति कहा जा सकता है। तो भामा कलाप, भरतनाट्यम, क्षत्रैया के पद, अध्यात्म रामायण के पद आदि साभिनय गाने में रत्नगिरी निष्णात थी। स्पष्ट उच्चारण और भावाभिराम अभिनय में वह अपना जवाब आप थी। मेहनत की विद्या थी उसकी। वह बोली, हमें बुलावा आए या न आए, हमने जमींदार का नमक खाया है, अतएव राजतिलक के समय टोली समेत हाजिर रहना ही पड़ेगा। यह कहकर वह अपनी टोली जमाने में जुट गई। जब से रत्नगिरी रामेश्वर शास्त्री की उपपत्नी बनी थी तभी से उसने मुजरा करना छोड़ दिया था। शास्त्री जी ने उसे केवल 5 वर्ष तक रखा, तदुपरांत छोड़ दिया। रत्नागिरी अपना पेशा छोड़कर शास्त्री जी की दी हुई जायदाद के सहारे जीने लगी। देवदासी उसकी लड़की थी। राज तिलक के समय अपनी माँ का गाना और नाचना उसे पसंद न था, पर वह अबोध थी, अतएव रत्नगिरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। राज तिलक से 4 दिन पहले रंगाराव मद्रास में आ पहुँचे। कृष्णम नायडू की मृत्यु के बाद से उनके हाथी लक्ष्मण स्वामी ने खाना पीना छोड़ दिया था। अब वह न पीपल के पत्ते खाता था और न पानी छूता था। घास में लपेट कर दिए गए अफीम को सूंड फैलाकर नहीं लेता था। पीपल के नीचे खड़े होकर उसने लगातार तपस्या शुरू कर दी थी। फिलवान ने दीवान जी को उसका हाल सुनाया, परंतु काम की व्यस्तता में दीवान जी ने ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मण स्वामी की आयु 50 वर्ष की थी, बहुत बूढ़ा हो चला था। कोई दूसरा हाथी उस आयु तक जीवित नहीं रहा। जिस दिन रंगाराव मद्रास से लौटने वाले थे उसी दिन लक्ष्मण स्वामी खा पी कर प्रसन्नता से उछल कूद मचाने लगा। फीलवान लक्ष्मण स्वामी की मर्जी जानता था। उसने उसकी पीठ पर हौदा बांधा और उसने जमींदार साहब के रास्ते में 2 मील आगे ले जाकर वहाँ प्रतीक्षा करने लगा। दीवान जी या अन्य किसी कर्ता धर्ता ने उससे कारण न पूछा। फिलवान ने किसी को कुछ न बताया। रास्ते में 3 घंटे की प्रतीक्षा के बाद दूर से जमींदार की मोटर गाड़ी आ पहुंची। ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया, परंतु लक्ष्मण स्वामी रास्ते से नहीं हटा। बूढ़े लक्ष्मण स्वामी के शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थीं। कृष्णम नायडू के राज तिलक का वह हाथी आज बहुत दुबला हो गया था, तथापि उसकी दृष्टि में राजसी ठाठ विद्यमान था। अंत में जमींदार साहब ने गाड़ी रुकवाई, फिलवान को खूब फटकारा। फिलवान ने कहा, सरकार हाथी यहाँ से हिलना नहीं चाहता। 4 महीने से उसने खाना पीना छोड़ रखा था, आज फिर से खा पी कर उछल कूद मचा रहा है। मैं जानता था कि आज के शुभ अवसर पर इस पर हौदा नहीं बंधेगा तो यह पागल हो जाएगा, इसी से हौदा बांध कर सरकार की सवारी के लिए आया हूँ। यह सुनकर रंगाराव बहुत झल्लाए और मोटर गाड़ी को दूर से घुमाकर निकल गए। लक्ष्मण स्वामी ने यह देखकर अत्यंत हृदय विदारक चिंघाड़ की। रंगाराव को ऐसा लगा कि उनके पीछे आसमान जमीन पर टूट पड़ा है। रंगाराव ने पीछे पलट कर देखा, लक्ष्मण स्वामी का शरीर असह पीड़ा से टेढ़ा मेढ़ा हुआ जा रहा था। फिलवान नीचे गिर पड़ा और ज्यों त्यों उठकर पास के पेड़ तक आ पहुंचा। जमींदार की मोटर गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। लक्ष्मण स्वामी ने वहीं रास्ते के पास प्राण छोड़े। उसने न तो राजा का रास्ता रोका और न ही उनके मुसाहिबों का। बेचारा फीलवान अपने 50 बरस के प्रिय बंधु को छोड़ न पाता था। उसके मृत कलेवर पर पड़ा पड़ा वह संध्या समय तक रोता रहा। सांझ होने पर उसने हौदे की रस्सियाँ खोली और अंकुश हाथ में लेकर अपने बड़े बेटे का दहन संस्कार करके लौटने वाले बाप की तरह लौट आया। बूढ़ी स्त्रियों ने कहा कि हाथी की मृत्यु अशुभ सूचक है। आधुनिकों ने कहा, ये बूढ़ियाँ ऐसी ही बकवास किया करती हैं। दूसरे दिन हौदा वापस मंगाया गया। रास्ते में कुछ दूर लक्ष्मण स्वामी को दफनाया गया। उसी दिन फीलवान बीमार पड़ गया। राज तिलक के उस कोलाहल में कौन खबर लेता। उसे जोर का बुखार आया। बुखार में उसने सपना देखा कि लक्ष्मण स्वामी अपनी सूंड से उसे खींच रहा है और उसके शरीर में अपने दांत गड़ा रहा है। फीलवान भी तीसरे दिन चल बसा। चौथे दिन रंगाराव का राज तिलक हुआ। मुहूर्त सवेरे था। राधा कृष्णैया और सरवा रायडू के इशारों पर रंगाराव उठ बैठ रहे थे। उन्हीं के आदेशानुसार सब कुछ हो रहा था। राज तिलक के समय कविगण अपने पद्य सुनाने लगे। कुछ लोगों को सुनाने का अवसर ही न मिला। भाटों को भी उस गड़बड़ में अपना बखान सुनाने का समय न मिल सका। बड़े बड़े अफसर आ रहे थे, उनकी आवभगत के लिए लोग इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। रंगाराव हाथी दांत के सिंहासन पर आसीन हुए। सिंहासन में सोने की नक्काशी की गई थी। उसके सिर पर नागन्ना नायडू का बनवाया हुआ राजमुकुट था। उस मुकुट में वज्र, वैदुर्य, गोमेधिक, पुष्पराग, मरकत, माणिक्य आदि 3 पंक्तियों में जड़े थे। जमींदार उस वेश में मध्यान्ह सूर्य की भांति दुर्निरक्ष तेज से चमक उठे। सभा में सब लोग मौजूद थे, केवल धर्माराव नहीं था। उसे किसी ने नहीं बुलाया और न ही वह खुद आया। आज तक सुबन्नापेट के किसी जमींदार का राज तिलक धर्माराव के पूर्वजों की अनुपस्थिति में नहीं हुआ था। राजा के सिर पर पुरोहित अभिषेक जल का प्रोक्षण कर रहे थे। ठीक उसी समय सभा में सांप सांप की आवाजें उठी। सारे लोग हड़बड़ा उठे। सारी सभा में कोलाहल मच गया। सांप को ढूंढा गया, पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग कहने लगे सिंहासन के पास से निकला था। औरों ने कहा बाहर चला गया। बिखरे हुए लोगों को फिर बिठाना बहुत मुश्किल हो गया। अभिषेक के बाद ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के मंत्र पढ़े। तब तक मध्याह्न हो चुका था। कुछ प्रथित यश कवियों का सम्मान हुआ। सभा समाप्त हुई। भोजन के बाद रंगाराव दीवान खाने में सिंहासन पर बैठे थे। दीवान जी, राधा कृष्णैया, रामेश्वर, सरुरायडू आदि सब लोग उपस्थित थे। रंगाराव ने पूछा, बीच में सांप सांप की गड़बड़ किसने मचाई थी? रामेश्वरम बड़ा चतुर था, उसने प्रश्न में ही उत्तर दिया, धर्मराव राजतिलक के समय आया था। दीवान जी ने कहा, उसी ने यह सब गड़बड़ करवाई होगी। दीवान जी धर्मराव को नहीं पहचानते थे। रंगाराव को रामेश्वरम की बातों पर विश्वास न हुआ। वे धर्मराव को जानते थे कि वह बिना निमंत्रण के नहीं आता। सरवा रायडू ने कहा, वह आया ही नहीं। रंगाराव, हाँ हाँ क्यों आएगा, अब हमारा नमक कड़वा जो हो गया है। राधा कृष्णैया, उसे निमंत्रण भेजा गया था। रामेश्वरम, निमंत्रण की क्या आवश्यकता थी, अपने आश्रय में जीने वालों को भी क्या निमंत्रण भेजना पड़ता है। जमींदार साहब को यह बात जच गई। धर्मराव से उनका वैमनस्य था ही, इन बातों से वे और बिगड़ गए। इतने में सरुरायडू ने कुछ कहना चाहा पर रुक गया। जमींदार साहब ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? सरवा रायडू बोला, कुछ दिन हुए गणाचारी एक अजीब गाना गाती हुई गांव में घूमी थी। हजार सिर वाला सांप स्वप्न में राजा को डस गया है, यह था उस गाने का सारांश। आज फिर से सांप सांप की चीख पुकार मची, पता नहीं इन दोनों में क्या संबंध है। यह सुनकर रंगाराव ने मुंह खोलकर अपना विस्मय व्यक्त किया। कारण पूछने पर वे कहने लगे, मैंने पुराने दीवान जी को हटाकर नागेश्वर राव की नियुक्ति का ऑर्डर भेजा था। रात को मुझे नींद नहीं आई, भोर होते होते आंख लगी और मैंने सपना देखा कि हजार फन वाला एक सांप आकर मेरी सेज के पास पूंछ के बल खड़ा हो गया। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। मैंने सुना था कि पिताजी और उनके पूर्वजों को स्वप्नों में इसी प्रकार सांप के दर्शन हुआ करते थे। मैंने उन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। उस रात मुझ पर यही बीती, वह सांप खड़ा खड़ा मेरी ओर देखता रहा, अपनी आँखों और जीभों से विष उगलता रहा। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। मेरे प्रयास पर क्रुद्ध होकर उसने अपने हजार फनों से मुझे हजार जगह डस लिया। मेरे शरीर में कोई ऐसा भाग न था जहाँ उसने न डसा हो। मैं घबरा गया। घबराहट के साथ ही मेरी नींद खुल गई। देखा कि भोर हो रहा है। तदुपरांत मुझे नींद नहीं आई और आज तक मैंने ऐसा कोई सपना फिर नहीं देखा। धर्मराव, यह तो बड़ी अजीब बात है, उस सपने का गणाचारी को कैसे पता चला? आपने किसी को कहा तो नहीं? रंगाराव, नहीं तो, और कहने को उसमें था ही क्या? धर्मराव, होगा अवश्य कुछ, आपका गाँव ही सांपों का गाँव मालूम होता है, आप सब सांप वाले हैं। रंगाराव ने इन बातों को मजाक समझा। दीवान जी बोले, यह सब निरावहम है। फिर वे हंस पड़े। ऊपर धर्माराव नाम आया है, यह पता नहीं कैसे आया। रंगाराव ने सिर उठाकर देखा, सर्वत्र जरी के बंधन वार बंधे थे। एक एक तोरण की नोक पर सफेद रेशम का कपड़ा मोतियों की फुलझड़ी की तरह बांधा गया था और उस फुलझड़ी की नोक पर लाल कपड़ा गुलाब की तरह मोड़कर चिपकाया गया था। रंगाराव के कल्पना पथ में सारे तोरण सांप बन गए, सफेद रेशम की फुलझड़ियां फण बन गईं और लाल लाल कपड़े की गुलाबी आकृतियां रक्त उगलते शीर्ष बन गए। स्वप्न का फिर से साक्षात्कार हुआ। रंगाराव मन ही मन विभ्रांत हो उठे पर प्रकट में कुछ नहीं बोले। शाम को गायन का कार्यक्रम था। गायक का नाम था नागेश्वर अय्यर। मृदंग बजाने वाला था भुजंगम। खंजरी वादक का नाम था सुब्रमण्य पिल्ले और वायलिन वादक था शेषु अय्यर। जमींदार ने सभा में बैठकर कार्यक्रम देखा। सारा कार्यक्रम उन्हें सर्पमय लगा। रंगाराव गाना सुन रहे थे। नागेश्वर अय्यर ने राग का नाम बताया, शंकराभरण। जमींदार ने दीवान जी से पूछा, क्यों जी, शंकराभरण का अर्थ सांप है ना? दीवान जी बोले, हाँ हो सकता है। रंगाराव कहने लगे, आज के इन कलाकारों में हर एक के नाम से सांप का अर्थ निकलता है ना? दीवान जी बोले, मेरे नाम से क्या अर्थ निकलता है? जमींदार साहब ठहाका मारकर हंस पड़े, पर वह हंसी निस्तेज थी, कागजी फूलों की तरह परिमलहीन। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही जमींदार उठकर चले गए। गायक सामाजिकों को अपनी कला के कर्तव्य दिखा रहे थे। जो संगीतज्ञ थे वे सिर हिला रहे थे। तमिल प्रांत के लोग बहुत खुश थे। नागेश्वर अय्यर जब तक गाता रहा अपने हाथों को सांप के फण की आकृति में घुमाता रहा। वह हस्तचालन देखकर रंगाराव और चिढ़ गए थे। रात को नाटक हुआ। जमींदार और अन्य कर्ता धर्ता नाटक देखने नहीं गए। नाटक के निर्वाहकों ने जमींदार के आने की बार बार विनती की, परंतु जमींदार साहब के सिर में दर्द हो रहा था। दीवान जी ने नाटक वालों को समझाया कि सरकार बहुत थक गए हैं, आएंगे भी तो नाटक देख नहीं पाएंगे। फिर नाटक वालों ने दीवान जी के को आने पर मजबूर किया, परंतु दीवान जी ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि उनका मन स्वस्थ नहीं है और दूसरे दिन के लिए बेशुमार काम पड़े हुए हैं। अतएव केवल प्रेक्षक गण के लिए नाटक खेला गया। नाटक के दौरान कोई सांप वाप नहीं आया। अलबत्ता पीछे बैठे हुए लोगों के बीच जमीन गीली होने के कारण मेढक अवश्य आए, नाटक में कोई आकर्षण नहीं रहा। दुशाले ओढ़े हुए और हाथ में कागज के बंडल लिए हुए दुर्लभ प्रतिष्ठित कवि दूसरे दिन सवेरे राजदर्शन के लिए आ पहुंचे। रंगाराव ने अभी अभी उठकर मुंह धोया था और काफी पी रहे थे। कृष्णम नायडू के राज्यकाल में कोठी में कॉफी का नाम निशान तक न था। पुराने जमींदार सवेरे उठते ही कालकृत्य समाप्त करके तिरुचूर्ण का तिलक लगाते और काम में जुट जाते। खूब दिन चढ़ने तक कुछ नहीं खाते थे, तदुपरांत भोजन करते थे। भोजन से पहले वे कुछ नहीं खाते थे, ऐसा खाना स्वास्थ्य विज्ञान के विरुद्ध माना जाता था। रंगाराव को पढ़ाई के दिनों से ही कॉफ़ी की आदत पड़ गई थी। पिता के रहते हुए कोठी में उनके लिए कॉफ़ी की व्यवस्था न हो सकी। सुबन्ना पेट छोड़कर कहीं और जाते तो कॉफ़ी अवश्य पीते थे। मद्रास में तो वे लगभग 2 महीने तक कॉफ़ी पर ही जीवित रहे। कवि आकर अपनी रचनाएं सुनाने लगे। उनकी कविता अच्छी थी। राजा ने दोनों को 300-300 रुपये का पारितोषिक देकर विदा किया। उसके उपरांत तवायफों के नृत्य का आयोजन हुआ। बाहर से आई हुई 10 टोलियों के अलावा रत्नगिरी की टोली भी आ पहुंची। रंगाराव को ज्ञात नहीं था कि किस टोली को बुलाया गया है और किसको नहीं। राधा कृष्णैया ने रत्नगिरी से पूछा, बिन बुलाए ही तुम क्यों चली आई? रत्नगिरी बोली, प्रभु यह संस्थान मेरा है, मेरे बिना किसी और को यहाँ आने का अधिकार नहीं। मुझे बुलाएं या न बुलाएं मैं आकर रहूँगी। रामेश्वरम बोला, यह अक्ल तुम्हारी बेटी को भी होती तो कितना अच्छा होता। सब लोग हंस पड़े। रत्नगिरी को रामेश्वरम की बात सुनाई नहीं थी। वेश्याओं के नृत्य का कार्यक्रम हुआ। संध्या समय मैजिक तथा जादू टोने का कार्यक्रम था। रात को सर्कस होने वाला था। इन प्रदर्शनों के लिए अलग पंडाल लगाया गया। पंडाल के चारों ओर टट्टियाँ बांधी गई। भीतर कुर्सियाँ और बेंच मंगाकर रखवाए गए। बड़े अफसरों और राजबंधुओं के लिए आसन उद्दिष्ट थे। पीछे बैठे हुए सामान्य प्रेक्षक न कुछ देख पा रहे थे और न कुछ सुन पा रहे थे। द्वार पर पुलिस के सिपाही खड़े थे। वे केवल प्रतिष्ठित सज्जनों और अपनी राय में सम्मान्य लोगों को ही भीतर जाने दे रहे थे। राज तिलक देखने के लिए परगने के देहातों से कई बड़े बड़े किसान आए थे। वे अपनी देहाती पोशाक में थे। गेहूं रंग की धोतियाँ, पुराने ढंग के कुर्ते, सिरों पर पगड़ियाँ, माथे पर बड़े बड़े तिलक, आधुनिक अतिथियों को ये किसान गंवार लगे। तथापि उन्हें भी अग्रस्थान में बिठाया गया। जादू का कार्यक्रम शुरू हुआ। बीच बीच में वे किसान भी तालियां बजा रहे थे। प्रोफेसर साहब की प्रशंसा हुई। आए हुए किसानों में से एक ने जादू का कार्यक्रम देख के कहा, यह सब क्या है महाशय? मैंने इस जादू को न जाने क्या क्या समझ रहा था। इन प्रोफेसर साहब को कोट और सूट उतार दो तो हमारे देहातों में आने वाले जादूगरों में से किस बात में अधिक हैं। सचमुच इन्होंने उतना अच्छा काम किया ही नहीं। इस कथन के जवाब में एक और सज्जन बोले, नहीं नहीं, यही कार्यक्रम उत्तम है, नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग प्रोफेसर साहब की प्रशंसा क्यों करते। सर्कस के लिए अलग डेरा लगवाया गया था। राज तिलक के दिनों में लोगों की गड़बड़ से सर्कस वालों की रक्षा करने के लिए पुलिस का विशेष बंदोबस्त किया गया। पहले प्रेक्षकों को बिठाने का काम कोठी के दासपुत्र परिचारकों के जिम्मे था। वे उसे अपना गौरव समझते थे, परंतु वे आज लाल पगड़ी वाले पुलिस के सिपाही आकर उन्हीं पर हुक्म चलाने लगे। यह देखकर परिचारक बहुत नाराज हुए, पर क्या करते, जमींदारों पर उनका अव्याज प्रेम और अभिमान था। जमींदार जो भी हुक्म देते वह उनके लिए शिरोधार्य था। चारों ओर अंधियारा छा गया, मानो आकाश रूपी काला महासागर भूमि रूपी तट पर अपनी तरंगों से थपेड़े लगा रहा हो। मानो रात्रि चर भूत प्रेत आदि नाना पिशाचों के विकट भ्रू परिवर्तन की छटाएं 10 दिशाओं में फैल गई हों। मानो सूर्य के तेज को खोलकर काल अपनी सहज आकृति को प्राप्त हुआ हो। मानो दिशा रूपी रीछ अपने लंबे और काले केश लिए सर्वत्र संचार कर रहे हों। मानो विज्ञान अवसर पाकर ज्ञान का उच्छेदन करके मन की गहराइयों तक फैल गया हो। मानो असंख्य काल सर्प एक दूसरे से लिपटे हुए सर्वत्र विचर रहे हों। दूसरे दिन भी वेश्याओं का नृत्य तथा गायन का कार्यक्रम हुआ। रामेश्वरम ने बाहर से आई हुई टोलियों के बदले रत्नगिरि के ही नाच का आयोजन कराया। रत्नगिरि की आयु 46 वर्ष की थी। धीरे धीरे उसके शरीर पर बुढ़ापे का आक्रमण हो रहा था, देह में स्थूलता आ गई थी और पहले की तरह अभिनय करना उसके लिए कठिन था। तथापि रामेश्वरम ने उसी से नाचने की फरमाइश की। रत्नगिरि को नाच छोड़े 20 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी उसने कहा, मालिक का हुक्म है सो मैं अपनी कला का प्रदर्शन अवश्य करूँगी। प्रार्थना आदि के उपरांत रत्नगिरि ने एक आध्यात्मिक पद गाना शुरू किया, परंतु रामेश्वर ने उसे रोका और जावली गाने को कहा। जावली श्रृंगार रसपूर्ण पद होता है। रत्नगिरि क्षेत्रैया का एक पद गाने लगी। गाना प्रारंभ करते ही उसके मुख के स्नायुओं में एक अनूठी हलचल दृग्गोचर हुई, उनमें एक नयापन आ गया। पद का भावार्थ इस प्रकार था, एरी मेरा अधर सिहरने लगा, अपने आप निविबंध खुलने लगा, उस छलिया ने मन में मंत्र पढ़ा होगा, सखी देखा जब से मुव्वा गोपाल को। एरी मुव्वा गोपाल के पाद टिप्पणी में है। कृष्णा जिले का एक गांव है जहां तेलुगु के प्रसिद्ध पद कवि क्षत्रैया का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध नाट्य केंद्र कुचिपुड़ी गांव में यह गांव 2.5 मील दूर है। यहीं विराजमान भगवान गोपाल को क्षत्रैया ने अपनी कृतियों का नायक बनाया था। पद की पहली पंक्ति में ही 50 वर्ष की रत्नगिरि 16 वर्ष की कन्या की भांति लघु तन्वी बन गई। नव यौवन के आविर्भाव के समय नायक का प्रथम दर्शन करने वाली नायिका की भांति रत्नगिरि के मुखमंडल पर मुग्ध रेखाएं अंकित हो गईं। प्रेम के संभ्रम में उसका अधर सिहर उठा। वह विचलन ऐसा रमणीय था जैसे कमल अथवा गुलाब की पंखुड़ी पर एकाएक पड़ने वाले हिमबिंदु का विचलन होता है। सारा मुख निश्चल होते हुए भी केवल अधर की सिहरन वह कैसे दिखा सकी, यह भगवान ही जाने। उसे दिखाने के लिए न जाने रत्नगिरि ने कितना परिश्रम किया होगा। अतीव आकर्षक ढंग से बाएं हाथ में नीवी भाग को लेकर नृत्य करती हुई रत्नगिरि लट्टू की नाई घूम गई। उसने मन में मंत्र पढ़ा होगा। श्रृंगार रस के स्थायी भाव अर्थात रति की 10 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था अर्थात दर्शन की नर्तकी ने विस्फारित नेत्रों से, लज्जा और अनुराग के मिले जुले मुखभावों से, तनिक पुलकित कपोलों से मुग्धा नायिका के सारे लक्षण 16 आने अपने आप में प्रतिबिंबित करके प्रदर्शित किया। उसे देखकर रस का सारा संसार पुलकित हो उठा। उसके लय ज्ञान ने नाद में संसार को छंदोगमन प्रदान कर दिया। जब से वेणुगोपाल स्वामी को देखा, इस पंक्ति का उच्चारण करके भगवान के वेणुगान के अनेक प्रकार रत्नगिरि ने दिखाए। व्यस्त चरणों से मुख के निकट दोनों हाथों के विन्यास के साथ बाईं भुजा से गाल लगाकर किए हुए भ्रु विक्षेप से, मृदुल उंगलियों के विचलन तथा प्रसार से, बार बार खुलती मुदती पलकों की अभिराम अपंग रेखा से वेणुगोपाल की आकृति दर्शकों के कल्पना पथ पर आकर खड़ी हुई। वृंदावन, गोपियाँ, गोधन, यमुना, सारे दृश्य रत्नगिरि के तनु विन्यास में, राग में, ताल में और वदनांचल में प्रत्यक्ष दिख पड़े। रत्नगिरि को अपने शरीर की सुधि न रही। कई प्रेक्षक आपस में कुछ बातें कर रहे थे, कुछ लोग रत्नगिरि को नहीं देख रहे थे। उस अपूर्व अभिनय तथा नृत्य के दौरान एकाएक रामेश्वर ने कहा, रुक जाओ। परंतु अब रत्नगिरि को भगवान भी नहीं रोक सकते थे। रामेश्वरम ने पूछा, तुम्हारी बेटी क्यों नहीं आई? रत्नगिरि बोली, वह नहीं आती। रामेश्वरम, क्यों नहीं आती? क्या वह वेश्या नहीं है? रत्नगिरि ने कोई उत्तर नहीं दिया। रामेश्वर ने रत्नगिरि की लड़कियों को बुला लाने के लिए एक नौकर भेजा। रत्नगिरि कह रही थी कि वह नहीं आएगी, उसे मत बुलाइए, पर रामेश्वर ने नौकर को भेज दिया। थोड़ी देर में नौकर लौटकर कहने लगा, वह कहती है नहीं आऊंगी। रामेश्वर झल्लाकर बोला, क्यों नहीं आएगी? जबरदस्ती घसीट लाओ। रत्नगिरि ने बड़ी नम्रता से कहा, वह अभी लड़की है, उसका यहाँ क्या काम? परंतु रामेश्वरम ने एक न सुनी। जमींदार और दीवान जी भी इस मामले में कुछ नहीं बोले। नौकर ने जाकर देवदासी को बुलाया। उसने आने से इनकार किया। नौकर बोला, तुम्हें जबरदस्ती ले चलने का हुक्म है। यह कहता हुआ वह देवदासी को छूने लगा। देवदासी घबरा कर आंगन में दौड़ी। नौकर उसका पीछा करने लगा। देवदासी दौड़कर धर्माराव के घर पहुंची। नौकर वहां ही पहुंच गया। बेतहासा दौड़कर आई हुई देवदासी को देखकर धर्माराव ने पूछा, क्यों रे गिरिका, दौड़ी दौड़ी क्यों आई है? धर्माराव देवदासी को गिरिका कहकर पुकारता था। नौकर धर्माराव को देखकर रुक गया। धर्माराव के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। धर्माराव ने उसे लौटा दिया। वह उलटे पांव लौट गया और सभा में पहुंचकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। वहां कई अपरिचित व्यक्ति बैठे थे, कई शहरों से आए हुए सुशिक्षित कर्मचारी थे। उन्हें यह वृत्तांत सुनकर बड़ा कुतूहल हुआ। वे कहने लगे, यह धर्माराव कौन है? राजा साहब के हुक्म का विरोध करने के लिए उसने सीने में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? रामेश्वरम को ऐसा लगा मानो उसका सिर कट गया हो। उसने रंगा राव की ओर देखा, रंगा राव उसकी ओर नहीं देख रहे थे। रामेश्वरम को कुछ नहीं सूझा, किसी प्रकार बात निभाने के लिए वह बोला, क्यों री रत्नगिरी, तेरी बेटी को धर्मा राव ने रख लिया है क्या? हाँ यह भी ठीक है, बाप बेटे ने माँ बेटी को रख लिया, तुम लोगों में रिश्ता क्या और नाता क्या? यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। रत्नगिरी क्रुद्ध हो उठी, बोली, महाराज चाहे जितने बड़े हों पर बात करने का एक ढंग होना चाहिए, हर बात की एक सीमा होती है। धर्माराव और देवदासी भाई बहन हैं, हम नीच कुल के सही, पर हमारे बारे में जो मुंह में आए कह देना अच्छा नहीं। मैं आपके इनाम इकराम के लिए नहीं आई, रामेश्वर शास्त्री की दी हुई 10 एकड़ जमीन मौजूद है, मुझे पेट की चिंता नहीं। हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले, कई पीढ़ियों से इन जमींदारों का नमक खाते आए, इसी से सरकार के राजतिलक के समय अपनी कला का प्रदर्शन करने चली आई थी। आपके मुंह से गालियां सुनने नहीं, मेरी कला आपकी समझ में नहीं आई, दो चार घटिया गाने सीख कर अभिनय का लौलेश भी न जानते हुए उछल कूद मचाने वाली कोई जवान नर्तकी आपको पसंद आएगी, मैं क्यों पसंद आने लगी? हमारे देश से यह कला कभी के उठ चुकी है, यदि सरकार कहें तो मैं चली जाऊंगी, हम भी आत्मसम्मान रखते हैं। इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा। रामेश्वरम ने अपना गौरव निभाने के लिए कहा, इसे सरकार का ही हुक्म समझो, तुम्हें किसने बुलाया था यहाँ, चली जाओ। रत्नगिरी ने रंगा राव की ओर देखा, सरकार अपनी बुआ के पुत्र के पक्ष में हो गए और रत्नगिरी को जाने का हुक्म दे दिया। रत्नगिरी ने सबको नमस्कार किया और अपनी टोली के साथ सभा से निकल गई। जाते जाते उसके पांव के घुंघरू खुलकर नीचे गिर गए। रत्नगिरी घुंघरू उठाने के लिए झुकी तक नहीं, एक नौकर ने उन्हें उठाकर देना चाहा, पर वह घुंघरू लिए बिना ही तेजी से आगे बढ़ गई। इसके बाद सभा में गड़बड़ मच गई, लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, वेश्या को इतना घमंड, सरकार के समक्ष उनकी सगी बुआ के पुत्र और यहाँ के कर्ता धर्ता को ऐसा फटकारती है, महाराज भले मानस हैं इसीलिए इतने पर बात समाप्त हो गई। औरों ने कहा, हरेक की अपनी अपनी इज्जत है भैया, वेश्या है तो क्या हुआ, उसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता, भरी सभा में अपमान करने पर कौन चुप रहेगा। कुछ और लोग कहने लगे, भाई यह धर्माराव कौन है, जमींदार का भी विरोध करने वाला सूरमा मालूम होता है, उसे जमींदार ने भी कुछ नहीं कहा, शायद वह ऐसा ही कोई बड़ा आदमी होगा। इन्हीं व्याख्याओं से सभा में कोलाहल मच गया, बैठक वहीं समाप्त कर दी गई। सारे राजबंधु खिसिया से गए, उनके मुख पर लज्जा स्पर्धा और क्रोध झलक रहा था। रंगाराव महल में चले, दीवान जी और अन्य तीनों कर्ता धर्ता वहां उनसे मिलने गए। जमींदार साहब ने रामेश्वरम को बहुत फटकारा, बोले, तुम्हीं ने सब कुछ किरकिरा कर दिया, यहाँ यह कहाँ का झमेला ले आए, आज हमारी मान मर्यादा जाती रही, उस वेश्या के टुकड़े टुकड़े भी कर डालो तो पाप नहीं, कैसी जली कटी सुनाई उसने, पर उसका क्या दोष था, दोष सारा तुम्हारा था, छे छे हमारी जग हंसाई हुई, हम उसका क्या बिगाड़ सकेंगे, यह सारी मुसीबत धर्माराव के कारण आई, उसका इस मामले में पड़ने का क्या काम था, वह लड़की उसकी शरण में क्यों चली गई, उस धर्माराव में इतना साहस कहाँ से आया, कैसे उसने उस लड़की को आने नहीं दिया, आज हर तरफ से मेरी नाक कट गई है। रामेश्वरम यह सब अनर्थ तुम्ही ने किया, कहीं तुम उस लड़की पर लट्टू तो नहीं हो गए हो, मैं तुम्हारा पक्ष लेता या उनका, सच पूछो तो इस मामले में उनका कोई दोष नजर नहीं आता, गाँव में जो टोली मौजूद थी उसे तुमने क्यों नहीं बुलाया, छिह छिह छिह। आषाढ़ शुक्ला सप्तमी थी, वर्षा का प्रारंभ था, लगभग एक महीने से हल्की हल्की फुहार होती आई थी, पर उस रात काले बादल ऐसे घिराए थे मानो लक्ष्मण स्वामी सहस्र आकृतियां धारण करके आकाश पर छा गया हो, ऐसी झड़ी लगी मानो लक्ष्मण स्वामी अपनी सूंड से मंदाकिनी को चूसकर तप्त भूमि को ठंडी करने के लिए सतत धार में वर्षा कर रहा हो। सारे प्राणी जहाँ के तहाँ रह गए, मानो उसका अष्ट दिग्बंधन हुआ हो, नगाड़े मृदंग ढोलक आदि सारे चर्मवाद्य मूक से पड़ गए, उनकी सारी गूंज वर्षा की गूंज में समा गई, इधर से उधर और उधर से इधर जोरों का झंझावात चला, जिसके कारण सारे पंडाल जमीन पर गिर पड़े, सर्कस का डेरा छिन्न भिन्न हो गया और खंभे आदि टूट कर गिर पड़े, बादलों की गरज और बिजली की चमक अत्यंत भयानक हो उठी, सारा व्योम शब्दमय तेजोमय और जलमय होकर दसों दिशाओं को निगल गया। राज तिलक का समारोह वहीं समाप्त हुआ। ग्रामांतर से आए हुए लोग बड़ी कठिनाई से लौट पाए। उसी दिन जो झड़ी लगी सो 10 दिन तक चलती रही।